जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन गज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चारी यमुना तीरा बन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन गज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चारी यमुना तीरा बन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी विष्णुपाद परमहंस परिव्राजगचार्य स्तोत्र श्री श्रीमदेश अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रैक्टिस कॉन्फाउंडर आचार्य सेवदी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ति वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौणताय भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एन गौरांगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या 11 सबने निकाल लिया बोलिए। श्री भगवान वाच अशोच्यानन्व शोचस्त प्रज्ञावादां च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। शब्दार्थ बोलिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा अशोच्यान जो शोक के योग्य नहीं है अन्व शोच शोक करते हो त्वं तुम प्रज्ञावादान पांडित्य पूर्ण बातें च भी भाषसे कहते हो गत चले गए रहित असून प्राण अगत नहीं गए असून प्राण च भी न कभी नहीं अनुशोचन्ति शोक करते हैं पंडिताः विद्वान लोग। मेरे अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानित मीरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सत्य कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं अशोच्य आनन्म सोचस्तुम, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए और पंडितों के से वचन कह रहे हो। जो विद्वान होते हैं जो पंडित हैं वे शोक नहीं करते हैं उनके लिए जिनके प्राण चले गए हैं और ना उनके लिए शोक करते हैं जिनके प्राण नहीं गए हैं। हाँ, अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रीला प्रभुपाद की, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं तात्पर्य में, अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा, मतलब प्रत्यक्ष मूर्ख नहीं कहा भगवान ने, अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ख कहा है ना। भगवान ने सीधे ये नहीं कहा कि तुम मूर्ख हो, इन क्या कहा, पंडितों के से वचन कह रहे हो और शोक कर रहे हो उनके लिए जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि मूर्ख हो है ना। उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है और चूंकि उसमें इस ज्ञान का भाव था अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब जो मेरा लेख छपा था भगवत दर्शन में इस श्लोक पर, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप तो ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि वे उनके लिए शोक कर रहे हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि श्लोक संख्या 7 में अर्जुन ने कहा था कि शिष्यस्ते हम, अर्थात मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए अब श्री कृष्ण अर्जुन को गुरु की तरह उपदेश दे रहे हैं। गुरु का सर्वप्रथम कर्तव्य है अपने शिष्य की कमियां निकालना। गुरु का सबसे पहला कर्तव्य है अपने शिष्य की कमियां निकालना। इसलिए श्री कृष्ण सर्वप्रथम अर्जुन की कमी बतला रहे हैं। वो कमी क्या है? अर्जुन की कमी यह है कि वे उनके लिए शोक कर रहे हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु के मुख से अपने दोषों को सुने, है ना? शिष्य का एक कर्तव्य है। ये कहा जाता है कि अगर गुरु या मंत्री या वैद्य अगर प्रिय बोलते हैं तो इसका मतलब वो दुश्मन है। मंत्री कहता है कि आप जो कुछ करते हो वही ठीक है, जैसा आप करना चाहो वैसा करो, अच्छा है। चिकित्सक है, वो कहता है जो कुछ खाना चाहो जैसा चाहो वैसा करो, है कि नहीं? और गुरु भी शिष्य से कहता है तुम जब तुम्हारी जो मर्जी है सो करो। तो ये सब दुश्मन है ना। तो गुरु का कर्तव्य है कमी दिखलाना, है ना? चिकित्सक वैद्य उसका भी कर्तव्य है रोग ढूंढना रोगी के अंदर। और मंत्री का भी कर्तव्य है कि राजा के जो है ना कार्य में देखना कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं और वो सुझाव देता है, सलाह देता है। तो शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु के मुख से अपने दोषों को सुने। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में वर्णन है कि व्यास जी भी अपने आश्रम में बैठे हुए शोक में मग्न होकर विचार कर रहे थे कि यद्यपि उन्होंने 4 वेदों का विभाजन कर दिया तथा महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर दी है, परंतु फिर भी क्या कारण है कि उनका हृदय प्रसन्न नहीं हो रहा है? अर्जुन शोक कर रहे हैं, व्यास जी शोक कर रहे हैं। जैसे ही नारद जी उनके पास आए तो व्यास जी ने उनका सत्कार करके कहा, आप तीनों लोकों में सूर्य के समान विचरण करते हैं। यद्यपि मैं धार्मिक नियमों का पालन करते हुए दिव्य ज्ञान में निपुण हो चुका हूं, परंतु फिर भी आप मेरी त्रुटि बतलाइए। तो ये कर्तव्य है शिष्य का। व्यास जी कह रहे हैं कि मैं इतना योग्य हूं लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो कमी है वो आप बताओ, है ना? क्योंकि मेरे अंदर कुछ कमी लग रही है कि मैं प्रसन्न नहीं हो रहा हूं अपने हृदय के अंदर, तो क्या कमी है? तो शिष्य पूछ रहा है गुरु से कि मेरी कमी बतलाओ। तो कहीं शिष्य गुरु से पूछता है कि मेरी कमी बतलाओ, और कहीं गुरु शिष्य को बता रहा है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, है ना? तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं तुम्हारी ये कमी है, तुम्हारा अंदर ये दोष है। और व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं कि मेरे अंदर क्या दोष है वो बताइए। इस प्रकार नारद जी ने व्यास जी की कमी बतलाई। अब नारद जी ने क्या कहा? जिस प्रकार आपने धर्म अर्थ तथा इंद्रिय तृप्ति का वर्णन किया है, उस प्रकार से आपने अपने साहित्य में भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। ये कमी बतलाई नारद जी ने, है ना? व्यास जी के अंदर कमी कौन बता सकता है? इतने महान व्यास जी हैं, ने नारद जी ने कमी बतलाई। इस प्रकार नारद जी से प्रेरणा प्राप्त कर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, है ना? तो उनको शांति मिली व्यास जी को। नारद जी ने जो कमी बतलाई उससे फिर व्यास जी को जो ना बहुत शांति मिली, उन्होंने उस कमी को पूरा किया, श्रीमद् भागवत की रचना की ना। श्रील प्रभुपाद भी अपने शिष्यों से कहा करते थे, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से कहा करते थे, मेरा ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम लोगों की कमियां देखूं। ये मेरा कर्तव्य है। ऐसे अक्सर कहा जाता है कि भाई दूसरों की कमियां नहीं देखना चाहिए, दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिए, है कि नहीं? और महात्मा गांधी के 3 बंदर हैं, महात्मा गांधी के 3 बंदर हैं, एक बंदर अपनी दोनों आंखें बंद कर रहा है कि भाई दूसरों की कमियां नहीं देखो, और दूसरा बंदर अपने दोनों कानों को बंद करता है, दूसरों की कमियां नहीं सुनो, और तीसरा बंदर अपना मुंह बंद करता है, दूसरों की कमियां मत बताओ, है कि नहीं। लेकिन यहां पर गुरु का कार्य है, शिक्षक का कार्य है कि वो देखता है कमियां, बोलता है कमियां, है कि नहीं, और शिष्य का कार्य है कमियां सुनता है, अपनी कमी सुनता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुम लोगों की कमियां देखूं। एक बार उन्होंने कहा था, मेरे शिष्यों में केवल यही कमी है कि वे मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे शिष्यों में केवल यही कमी है कि क्या नहीं करते, मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। हाँ, जब श्रील प्रभुपाद सर्वप्रथम अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिले तो उन्होंने भी यह शिकायत की, तुम लोग पढ़े लिखे नवयुवक हो, फिर भगवान चैतन्य के संदेश का विश्व भर में प्रचार क्यों नहीं करते। उन्होंने कमी देखी प्रभुपाद में, जैसे प्रभुपाद मिले कोई परिचय नहीं, जान पहचान कुछ नहीं, और तुरंत उन्होंने कमी बतलाई भक्ति सिद्धांत में। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच में असली संबंध यही है कि गुरु शिष्य के दोषों को बताए। जिस प्रकार कुम्हार, कौन कुम्हार, मिट्टी के कच्चे घड़े को ऊपर से चोट मार मार कर उसके अंदर कंकड़ पत्थर को निकालता है, परंतु घड़े के अंदर अपने हाथ का सहारा भी देता है। कच्चा मिट्टी का घड़ा है, ऊपर से वो मारता है, अंदर से हाथ का सहारा देता है, ताकि मिट्टी का कच्चा घड़ा टूटे भी नहीं। उसी प्रकार योग्य तथा अनुभवी गुरु अपने कठोर वचन रूपी चोटों से शिष्य के दोषों को निकालते हैं। तो गुरु क्या है, कुम्हार है। तो जैसे गुरु चोट मारता है कच्चे घड़े में, ऐसे गुरु जो ना चोट मारता है अपने कठोर वाणी के द्वारा। तथा श्री कृष्ण कथा रूपी अमृत का सहारा भी देते रहते हैं, अंदर से सहारा दे रहा है तो कृष्ण कथा का सहारा भी देता है, है ना, तो पोषण मिलता है शिष्य को। ऊपर से उसको पिटाई हो लगती है और अंदर से पोषण भी मिलता है कृष्ण कथा का, जो ना अमृत गुरु देते हैं। इस प्रकार से तथा श्री कृष्ण कथा रूपी अमृत का सहारा भी देते रहते हैं ताकि शिष्य निराश ना हो जाए, है ना, शिष्य का दिल टूट जाएगा, है कि नहीं, तो सहारा जरूर देना जरूरी है, क्योंकि वो भी कच्ची मिट्टी का घड़ा है, उसका दिल भी है ना, तो चोट मारते हो तो टूट जाएगा दिल, तो उसको अंदर से सहारा कृष्ण कथा का सहारा देते हैं। यदि कुम्हार कच्चे घड़े में ऊपर से तो चोट मारकर उसके कंकड़ों को निकालने का प्रयास करे, परंतु अंदर से हाथ का सहारा ना दे तो घड़ा टूट जाएगा। उसी प्रकार यदि गुरु अपने कठोर वचनों से शिष्य के दोषों को तो निकाले, परंतु उसे श्री कृष्ण कथा रूपी अमृत का सहारा ना दे तो शिष्य निराश हो जाएगा। जो तथाकथित गुरु श्री कृष्ण के भक्त नहीं होते हैं तथा अपने शिष्यों को केवल शुष्क ज्ञान देते हैं, उनके शिष्य कभी कभी इतने निराश हो जाते हैं कि वे स्वयं अपने गुरु को विष खिला देते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि गुरु श्री कृष्ण का भक्त हो। श्रील प्रभुपाद के शिष्य अभी भी याद करते हैं कि कभी कभी श्रील प्रभुपाद अपनी कठोर बातों से शिष्यों के अहंकार को बुरी तरह से कुचल देते थे। वो अहंकार भी कंकड़ पत्थर की तरह है, तो चोट मार करके अहंकार को कुचल देते थे, जिससे उनका हृदय अत्यंत व्यथित हो जाता था। परंतु कुछ समय बाद प्रभुपाद उन शिष्यों को श्री कृष्ण कथा के अमृत के द्वारा पुनः पुष्ट कर देते थे। तो यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वे उनके लिए शोक कर रहे हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, यदि भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने पिता पुत्र भाई आदि की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, तो फिर किसका शोक करना चाहिए, इसका उत्तर यह है कि चूंकि भगवान ने गीता 8:15 में बताया है कि यह संसार दुख और मृत्यु का स्थान है, इसलिए वास्तव में शोक का विषय यही है कि हम बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय में कपिल भगवान माता देवहूति से जीव की गर्भ में कष्टपूर्ण स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह शिशु माता के उदर में मलमूत्र के घृणित स्थान में, जो सभी प्रकार के कीटाणुओं का जन्म स्थान है, रहता है। उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयानक स्थिति में वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। माता के खाए कड़वे, नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा होती है, जो असह्य होती है। श्रील प्रभुपाद भी इन श्लोकों के तात्पर्यों में लिखते हैं, इस संसार की कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें माता के गर्भ में निकलने पर ही नहीं अपितु गर्भ में रहते हुए भी होता है। ये कष्टप्रद स्थिति उसी समय से प्रारंभ होती है जब जीव भौतिक शरीर से संपर्क स्थापित करता है। दुर्भाग्यवश हम इन अनुभवों को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर ठीक से विचार नहीं करते। अतः भगवद गीता में विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की कठिनाइयों को समझने के प्रति सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार शरीर निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में अनेक कष्ट सहन करने होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। दुर्भाग्यवश हम ये सारे कष्ट भूल जाते हैं और हम जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं। हम जन्म मृत्यु के बंधन से आत्मा को मुक्त करने की तनिक भी चिंता नहीं करते। ये हमारी सभ्यता का दुर्भाग्य है कि ये बातें ठीक से समझाई नहीं जाती, जिससे लोग इस संसार की दुखदायी स्थिति को समझ सकें। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अर्जुन जिस विषय में शोक कर रहे हैं वो वास्तव में शोक का विषय नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्थिति पर शोक करना चाहिए कि वह असंख्य जन्मों से इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहा है। इस विषय में शंकराचार्य का एक श्लोक है, शोक कर रहे हैं शंकराचार्य, क्या? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इस श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं कि हाय, एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेना पड़ता है तथा फिर से माता के गर्भ में बंध करके रहना पड़ता है। इन कष्टों की श्रृंखला अपने आप समाप्त नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि 100 जन्मों या 1000 जन्मों के बाद ये जन्म मृत्यु का चक्र अपने आप रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये संसार अत्यंत दुस्तर है। हे मुरारी, अपनी अपार कृपा से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार शास्त्रों तथा आचार्यों के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बारंबार इन बातों का चिंतन करना चाहिए। इसीलिए गीता 13:9 में भगवान कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, अर्थात जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों में दुख तथा दोषों का बारंबार चिंतन करना ही ज्ञान है। यहाँ पर शब्द है दुख दोष अनुदर्शनम। दर्शन का अर्थ है देखना, समझना तथा चिंतन करना, तथा अनु का अर्थ है बारंबार या पीछे पीछे। इस प्रकार अनुदर्शनम शब्द के 2 अर्थ हुए, पहला बारंबार देखना या विचार करना। बारंबार देखना या विचार करना, क्या? जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी में दुख है, दोष है इनको। और दूसरा, शास्त्रों तथा आचार्यों ने जैसा बताया है उसी के अनुसार देखना या विचार करना। ना, शास्त्रों में भी बताया गया है दुख दोष है, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी में दुख दोष है, शास्त्र भी बताते हैं, तो उनके अनुसार भी विचार करना कि शास्त्रों ने भी बताया है कि दुख और दोष है। तो वास्तव में यही शोक का विषय है। भगवान कह रहे हैं कि शोक कर रहे हैं उनके लिए जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, हैं? और जिनके लिए शोक करना चाहिए वो उसके लिए शोक नहीं कर रहे हो। परंतु जिस विषय में अर्जुन शोक कर रहे हैं, यद्यपि उसे भगवान कह रहे हैं कि यह शोक का विषय नहीं है, फिर भी शिष्टाचार के अनुसार व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि वह इस विषय में कुछ शोक प्रकट करे। शिष्टाचार है ये कि शोक करना चाहिए। कुछ जिस समय ये झूठा समाचार फैला कि लाक्षाग्रह में 5 पांडव अपनी माता कुंती सहित जलकर मर गए हैं, तो यद्यपि श्री कृष्ण तथा बलराम जानते थे कि वे सुरक्षित हैं, परंतु फिर भी कुल की रीति के अनुसार उन्होंने हस्तिनापुर में जाकर 5 पांडवों तथा कुंती माता की मृत्यु के लिए शोक किया। हाँ, तो भगवान को पता था, तो भगवान है तो उनको पता है कि 5 पांडव और कुंती की रक्षा हो चुकी है ना। लेकिन तो भी शिष्टाचार के अनुसार हस्तिनापुर गए, किस लिए? शोक मनाने के लिए, है ना। कर्तव्य है, शिष्टाचार है, शोक करना चाहिए। वे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर तथा गांधारी के साथ दुख प्रकट करते हुए